सुबृंदात विदिक्षते स्वाम। ओ प्रभो, मेरा तन मन वचन सब कुछ आपके चरणों में लग जाए। कैसे? जैसे जिस पक्षी के शावक को, बच्चे को, अभी पंख नहीं उगे हैं और उसके माता पिता कहीं गए हैं जंगल में उसके लिए कुछ लाने के लिए, तो उस समय डर के मारे चेकलता करता है, चिल्लाता है, रोता है, मैया कब आएगी, नहीं तो उल्लू उसे खा जाएंगे, और मैया आएगी तो कुछ खिलाएगी, इसलिए छटपटाता है, रोता है। ऐसे ही मैं सब समय आपका गुणानुवाद करूं, फिर आए जैसे वो तो बच्चा मैया के लिए रोता है और वो खाने के लिए रोता है, मैया के लिए नहीं रोता। और आज समझ में, वो मैया के प्रेम करने के लिए, मैया की सेवा के लिए, खुशी के लिए नहीं रो रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए कि मैया आएगी तो उसका डर चला जाएगा, उसको वो कुछ खिलाएगी। ये बहुत धिक्कार है मुझे, ऐसा नहीं मैं चाहता। जैसे बच्च तरह सुधारता, जैसे बछड़ा शाम तक भूखा है, शाम को गैया आई और बछड़ा मैया को देख करके डकरने लगता है, और जब घर का मालिक उसको खोलने के लिए जाता है दूध दुहने के लिए, दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, खोलने नहीं देता, और ये डांट डांट चिल्लाता है और मैया की चिंता करता है, यदि खोला मुश्किल से मैया के स्तन पर जाता है, चिल्लाता भी है मैया के स्तन पर जा रहा है, और जोर से मैया का स्तन पान करने लगा। ये बछड़ा किस लिए रो रहा था? मैया के लिए रो रहा था, हाँ मैया के लिए, तो किंतु किस लिए? अपने दूध के लिए। दूध पी लिया, पेट भर गया, मैया से कोई जरूरत नहीं, ऐसा प्रेम नहीं, प्रेम ऐसा नहीं चाहिए। पुकार रहे हैं भगवान को किंतु अपने स्वार्थ के लिए, तो ये भक्ति नहीं है, इस चीज को समझिए। ऊपर से लगता है कि ये भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किंतु मन उनका तो प्रेम तो है ही नहीं। तीसरी बात, प्रिय प्रिय व विषतंग विषंगा, प्रिया जिस प्रकार से अपने प्रियतम के लिए, विदेश में यदि उसका प्रियतम है तो उसके लिए चिंता करती है, उसका गुणानुवाद करती है और उसकी सेवा के लिए चेष्टा करती है, इसी प्रकार से हे प्रभु हमारा मन आपके चरण में लग जाए। यह किसका विचार है? चित्रकेतु महाराज। यहाँ तक तो सब साधक हैं, किंतु ये भी हमारा उद्देश्य नहीं, इसको भी पास में रख करके आगे बढ़िए। कैसे बढ़िए? भागवत में बतलाया गया, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तैव सन्मुखरितं भवदीयवर्तां स्थाने स्थिता तनुवं मनोभिर् प्रायसो अजितजीतो अपि त्रैह त्रैलोक्यम्। जो लोग ज्ञान को भी छोड़ करके, सत्व ज्ञान को भी छोड़ करके, कृष्ण भगवान है इसको भी भूलकर, कृष्ण मेरे प्रिय बंधु सखा हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, कृष्ण हमारे लाडले बेटे हैं, इस प्रकार से उनकी भक्ति करता है, ऐसे भक्त लोग श्रेष्ठ हैं इनसे बहुत। इसलिए इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? हनुमान जी। कैसे हनुमान जी हैं? बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, भगवान की सेवा राम के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। एक समय सीता जी अपने स्नानागृह में थी, स्नान किया और श्रृंगार कर सिंदूर लगा रही थी, हनुमान इनको खोजता हुआ पहुंच गई, ये मैया किधर गई, मैया किधर गई, देखा जी वो सिंदूर लगा रही थी, मैया ये क्या कर रही थी? तो मैं सिंदूर लगा रही थी, इससे क्या होता है? अरे तुम्हारे पिताजी है ना मेरे पति राम, वो कभी नहीं मरेंगे, अजर अमर हो जाएंगे। ओ ये बात ठीक है। वो निकल करके चले गए, निकल करके जब चली गई, उन्होंने भी स्नान किया और सारे शरीर में पोत लिया सिंदूर, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर पहनाते हैं। ये किस लिए पोत लिया? यदि यहां मांग में भरने से यदि सिंदूर, रामचंद्र जी चिर जीवन रहते हैं, वो मरेंगे नहीं, तो हम सारे शरीर में हम लगा दें, राम की सेवा करते तो और कुछ नहीं, राम के लिए सीता जी के खोज के लिए जाते हैं, रावण को भी परास्त करते हैं, सीता जी को कहते हैं जी हमारे पीठ पर चलो, वो राजी नहीं हुई, राम के युद्ध में, रावण के युद्ध में कितनी उन्होंने सेवा की, ये सब आप लोग जानते हैं, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसी सेवा ये दास्य भाव की कहलाती है। किंतु हनुमान जी कभी कभी ललकते हैं कि राम यदि हमें आलिंगन कर लेते, राम से मैं प्रेम से मिल ले जाता, ये नहीं संभव है। उसमें एक बाधा है, राम उनके उपास्य हैं, राम के ये उपासक हैं, उनके उपास्य भगवान हैं, इसलिए वो गंदे से कंधे गले से नहीं हिल मिल, इसलिए इनकी अपेक्षा कौन श्रेष्ठ हैं। इनमें कोई भी सांसारिक कामना नहीं है हनुमान में, इनकी कामना है कि किसी प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर। किंतु इसको कहते हैं मर्यादा। राम मर्यादा में बधे हुए हैं, हनुमान भी मर्यादा में बधे हुए हैं। अपना जूठा राम को नहीं दे सकते हैं, अत्यंत मीठी चीज भी होती, बहुत मस्ती। इसलिए इनकी अपेक्षा हनुमान से भी पांडव लोग अधिक श्रेष्ठ हैं। कैसे? अर्जुन से संबंध लगा लिया कृष्ण ने, क्या संबंध? अपनी बहन की शादी सुभद्रा की से। आप लोग जानते हैं कि सुभद्रा के साथ में कैसी शादी, छल बल कौशल से कराया। बलदेव जी चाहते थे कि इसकी शादी हो दुर्योधन से, और कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन से हो, उन्होंने छल बल से वो कराया। इसलिए कृष्ण उनके साले बने ना, और कुंती जी कृष्ण की बुआ है, उस दृष्टि से कृष्ण और अर्जुन भाई भाई रहते। इस तरह से संबंध रख करके कृष्ण अपने सेवकों के लिए घोड़ा धोते हैं, महाभारत के युद्ध में उनका सारथी का काम करते हैं, उनके लिए बाण से छलनी उनका शरीर हो गया, ऐसा सुना नहीं जाता है। ऐसे परम बंधु होकर के सिवा, किंतु जहां विश्व रूप उनको दिखलाया तो क्या हुआ? डर गए। प्रभु आप जगत के वंदनीय हैं, वेदों के भी प्रतिपाद्य ऋषि हैं, आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, मैंने गलती से आपको कहीं सखा कहा हो तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करें, आप मेरे सखा नहीं, आपने प्रेम के बस में हमारे सारथ किया, हमारे साथी घोड़ों को धोया, उनको चलाया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाथ जोड़ करके खड़े हो, ये प्रेम का बाधक है। इसलिए इस प्रेम से भी ऊंचा किसका? उद्धव जी का प्रेम है, बहुत ऊंचा उद्धव जी का प्रेम। यदि कृष्ण को कभी ब्रज में किसी को भेजना है तो किसको भेजेंगे? पांडवों को नहीं भेज सकेंगे, किसको भेजेंगे? जो अपने मन के अनुकूल हो। ये कौन है? एकमात्र जदुवंशियों में उद्धव है। किंतु ये उद्धव जी ब्रज में जाते हैं और गोपियों का प्रेम देखते हैं, नंद बाबा यशोदा जी का प्रेम देखते हैं, विचलित रह जाते हैं। कहिए कृष्ण तो मैंने सोचा था कि ये द्वारका में है, द्वारका में नहीं है, कहाँ है? ये तो पूर्ण रूप से ब्रज में बैठे हुए हैं, ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं जा सकते। गोपियों ने अपने प्रेम से इनको बांध रखा है। जिस समय में उद्धव गए ब्रज में, उस समय में नंद बाबा जी के घर में पहुंचे शाम को। जब शाम को वहां पर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था, यशोदा जी अंधी हो गई थी, कृष्ण प्रेम में बावरी हो गई थी। नंद बाबा सब समय अपने लाला के लिए सब समय चिंता करते हैं, उद्धव जी को किसी प्रकार से दूसरों के घर से कुछ चावल और अन्न मिला करके, जिसको खीर कहते हैं, वो बना, वो इसमें भी चीनी चीनी नहीं पड़ा, घर में क्यों नहीं बना? कौन बनाए? कौन? जो सोदा जी ने तो खाना पीना रसोई बंद कर दिया, जब कृष्ण ही नहीं रहे, हमें छोड़ करके चला गया, तो किसके लिए रसोई बनी? बर्तन औंधे हो गए चूल्हे पर, मकड़ों ने जाला बुन दिया, मकड़े जाल बुनते हैं ना, तो रसोई तो बनी नहीं, बर्तन साफ नहीं हुए और मकड़े ने ऊपर से जाला बुन दिया, अंधी हो गई है कृष्ण की। नंद बाबा की अद्भुत दशा है, अब वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनको कृष्ण की याद आती है। ब्रज में कहीं निकलते हैं तो कृष्ण की याद है, उनके चरण चिन्ह मिल जाते हैं, कहीं उनकी बंसी मिल जाती है, कहीं कुछ। जमुना के तट पर नहीं जाते, कृष्ण यहीं पर जाता था, इसलिए बड़े जोर से रोने लगते हैं। वो पूछना चाहिए, हमारा बेटा कैसा है लाला, कैसा कृष्ण है? किंतु ज्यों ही कृष्ण का स्मरण आया बड़े जोर से रोने लगे, हिचकी बंद हो गई, कुछ नहीं सके। उन्होंने दूसरे रूप में पूछा, हमारा भैया वसुदेव ठीक है, कुशल से है? कृष्ण के लिए पूछी नहीं, कृष्ण शब्द ही नहीं आया उनके। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? वसुदेव हमारा भैया ठीक है, वो पाप की मूर्ति था, अपने पापों से वो मारा गया। कंस पाप का मूर्ति थी, अपने आप कृष्ण क्या मारेगा उसे, वो अपने पाप से दुष्कर्म से ही मारा गया। कोई व्यक्ति को कोई व्यक्ति नहीं मारता, कौन मारता है? उसके दुष्कर्म मारते हैं, ये अपने पापों से मारा गया। ये कहते हुए कृष्ण की याद आई और बड़ी जोर से रोने लगते और उनकी लीलाओं का गान करने लगे। कृष्ण जमुना पुलिन में जाता था, गायों को चराता था, अपनी माँ का बड़ा प्यारा था। ऐसा कौन सा वृक्ष है वृंदावन में जिसके नीचे अपनी लीलाओं को नहीं करता था, यहाँ पर अपनी सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में नहीं खेलता था? ऐसा स्मरण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने मन को बहलाने के लिए जाते और वहां पर कृष्ण के फुटप्रिंट्स को देख करके विभोर हो जाते, रोने लगते। इस प्रकार से वो कुछ पूछ न सके कृष्ण के विषय। उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने हमें इनको सांत्वना देना के लिए भेजा, सांत्वना देना के लिए भेजा। मैं इन्हें क्या सांत्वना दूं? इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन धारण करना सार्थक है जो कृष्ण कहते हुए आंखों से आंसू जिनके निकल आते हैं। और ये दिन रात कृष्ण के लिए रो रहे हैं, इनसे आज जैसा संसार में दुर्लभ कौन होगा आज जैसा सौभाग्यवान। यशोदा को देखो, दिन रात रोते रोते मरणासन्न हो गई है, एकदम दुबली पतली हो गई है, खाना पीना जिनके लिए छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपका जीवन धन्य है, आप परम सौभाग्यवान हैं जो परम ब्रह्म को भी अपना पुत्र मान करके और उसके लिए रो रहे। इतने सुनते ही नंद बाबा ने क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया, बेटा मैं तो तुम्हें समझता था जो तुम कृष्ण के संगी हो और साथी हो, मित्र हो, तुम बहुत चालाक चतुर हो गए, बुद्धिमान हो गए। मैं देखता हूं कि तुम्हारे अभी दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे, अकल तुमको कुछ नहीं हुई। तुम कह रहे हो मुझे सौभाग्यवान कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि यदि विश्व में कोई दुर्भागा व्यक्ति है तो मैं ही। तुम कहते हो जिस तुम सौभाग्यवान इसलिए कि तुम्हारा पुत्र परब्रह्म है, ईश्वरों का ईश्वर है, और मैं देखता हूं कि ईश्वरों का ईश्वर परब्रह्म हमारे घर में पुत्र में के रूप में आकर देखा जे यहां पर आना हमारे लिए उचित नहीं, हमें छोड़ करके चला गया दूसरी जगह, तो हमारे जैसा दुखी कौन होगा? और ये कह करके विलाप कर रहे। उद्धव जी ने सोचा, मैंने गलती किया, सचमुच ये बात ठीक कह रहे हैं, किंतु शास्त्र में कहते हैं कि जो कृष्ण के लिए रोए उसे पढ़कर के कोई सौभाग्यवान नहीं, तो मैंने तो ठीक ही कहा था, किंतु इससे तो इनको सांत्वना होगी नहीं। क्या कहूं, कितने बड़े बुद्धिमान, समस्त शास्त्रों का वेत्ता, बृहस्पति जिनके गुरु हैं, कृष्ण जिनके सखा हैं, उनके मुख में कोई उत्तर नहीं आया। तो यशोदा जी की बात सोचिए क्या, उन गोपियों की बात सोचिए क्या, गोपियों का जो प्रेम देखा निश्चल, सुनकर के वो आश्चर्यचकित रह गए। प्रेम जब है तो इन गोपियों में ही है, तनिक भी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है, बस कामना क्या है? कृष्ण प्रसन्न रहे। न कर्म है, न योग है, न ज्ञान है, न सत्य, कुछ नहीं है, सब उनके चरणों में खिलते हैं, देकर के आश्चर्य से होकर के प्रार्थना करने लगे। क्या आसाम हो चरण ऋण जुषाम हम श्याम, वृंदावने किम अप गुल्म लताओ सभी नाम। हाँ, मैं जिन गोपियों की चरण धूलि को पाने के लिए मैं वृंदावन की घास लता बन जाता और उनकी चरण धूलि लग जाती तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। इन गोपियों ने इस पर ब्रह्म को अपनी सेवा से अपने वशीभूत कर रखा है, कृष्ण स्वयं इनके ऋणी हैं। कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं मैं गोपियों का ऋण देवताओं की आयु पा करके भी नहीं चुका सकता, न पा रहे हम निर्बद्ध सिद्धि जा। इसलिए उन्होंने कहा क्या, बंदे नंद ब्रजेश्वरी, नंद महाराज जी के आंगन में उनके गांव में जो रहने वाली गोपियां हैं उनकी चरणों की एक धूलि यदि बन जाऊं, हाँ बनना तो संभव नहीं, उस धूलि को मैं नमस्कार करूंगा। वो हमारे ऊपर में करुणा करे, ये कह करके एकदम प्रेम से गदगद हो गए। गोपियों से पूछा, गोपियों ये तो बतलाओ, मैं जाऊंगा तो कृष्ण से क्या कहूंगा, ये कहूं जो तुम्हारे विरह में गोपियां मर रही हैं, आप नहीं जाएंगे तो दो दिन के बाद में उनको जिंदा नहीं देखेंगे, इसलिए आपको जल्दी से लौट करके मथुरा से जिंदा बन गया, ये कहूं, एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार श्रीमती राधिका जी ने कहा, खबरदार ये मत कहना, तुमने कहा ये आपके विरह में, तुम लोगों के विरह में कृष्ण बड़े विरहित हैं, बड़े दुखी हैं, तो हम तो मर नहीं गई, सुन करके भी जीवित हैं, किंतु कृष्ण का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल है, यदि सुन लिया ये कृष्ण के विरह हमारे विरह में ये तड़प रही हैं गोपियां, तो जल्दी से मर जाएंगे, बच नहीं सकते, इसे खबरदार मत कहना, यदि कहना भी तो थोड़े से पहले कहना, फिर दूसरे दिन थोड़ा कहना, फिर धीरे धीरे कहना, जैसे कोई एक पुराना कपड़ा है ना, यदि उसमें पानी आ गया तो उसको निचोड़ना है तो कैसे निचोड़ेंगे, धीरे धीरे संभल कर, यदि जोर से ऐंठ देंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, इसलिए कृष्ण का कहीं कोमल हृदय कहीं फट ना जाए, इसलिए बहुत कहना, गोपियां बड़ी सुखी हैं, यदि तुम उनको भूल सकते हैं तो वो भी भूल गई हैं तुम्हें, और श्रृंगार करती हैं, खाती पीती हैं, खूब हंसती हैं, कृष्ण यदि वहां पर सुखी रहे और हमें पीस भी दें तो कृष्ण सुखी रहे। असली स्वापादरतंग पिनस्तु माम अदर्शनान मर्महतंग करो तुवा यथा तथा पितथा तु लंपटो मत प्राणाथ हस्तुता। यदि कृष्ण हमें आलिंगन बाहु में आलिंगन कर ले और आनंद दें, अथवा हमें छोड़ करके दूसरी स्त्रियों को प्यार करें, चाहे वो लंपट हो चाहे जो कुछ भी हो, किंतु हमारे प्राण ना, हम उनके बिना सेवा की रह नहीं सकते, हमारे अभिन्न हृदय हैं, ये गोपियों का मनोभाव है। किस लिए बतलाया, इन्हें सुन करके गोपियों जैसे कृष्ण की सेवा की वासना आए। गोपियां करती थी क्या, चलते फिरते उठते बैठते, झाड़ू देते समय, बच्चे को पल्ले में झुलाते समय, ओखल में कोई चीज कूटते समय, आटा पीसते समय, आंगन लिपते समय, पक्षी को पढ़ाते समय, वो क्या करती थी, गोविंद दामो धर्मा धरेती, गोविंद दामो, ऐसी दिनचर्या थी, घर भी पोत रही हैं, किंतु उनकी चित्त रूपी रथ पर कौन चढ़ा हुआ है, कृष्ण उनके चित्त पर चढ़े आरूढ़ है, जैसे किसी चीज पर हम चढ़ते हैं उनके मनोरथ पर, मन पर के जो मनोरथ है उसके ऊपर में कृष्ण सब समय, कृष्ण इधर उधर जिधर सिधर जित देखो तथा श्याममयी, ऐसी उनकी भावना थी, इसलिए बच्चों को सुला रही हैं थप थप ही दे करके ने? और कर रही है क्या, चित्त कहाँ है, गोविंद नामो गोविंद नामो। कोई सवेरे उठ करके पिंजरे में सुख पक्षी को पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही हूँ, गोविंद नामो कोई बच्चे को सुला रही है और पल्ले में झुला रही है, थपकियां दे रही है और लोरी क्या पढ़ रही है, दामो दामो। कोई झाड़ू लगा रही हैं, कोई रसोई पका रही हैं, किंतु कर खा रही हैं किंतु कभी कभी रोटी जल भी जाती है, कोई बात नहीं, और वो बड़ी स्वादिष्ट बन जाती है। क्यों? गोविंद नामो यह गोपी प्रेम जो है यही शुद्ध भक्ति है। इस चीज को समझिए, जब कोई भी कामना वासना हमारे हृदय में नहीं रहेगी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने तन मन वचन से सारी क्रियाएं कृष्ण के लिए होंगी, चित्त मन में उनमें रम जाएगा, और उस समय जो कीर्तन होगा, भगवान की कथाएं होंगी, वो भगवान का स्वरूप है, उसे जल्दी ब्रजानंद मिलते हैं। और नहीं तो लाखों वर्ष तक जब तक ध्यान कीर्तन करने से भी और किसी भी कार्य से नहीं होगा। ये भक्ति का मूल प्राण है। एक चीज और याद रखें, कृष्ण प्रसन्न अपने आप हो जाते हैं, ये भक्ति नहीं है। जो यशोदा जी कृष्ण का कान गरम कर रही और कृष्ण रो रहे हैं मैया मैया, और चारण मूर्ति कृष्ण से लड़ रहा है और कृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है, ताल ठोकर के उसे लड़ रहे, बड़ा आनंद हो रहा है कृष्ण, ये आनंद होना भक्ति नहीं है। कृष्ण तो आनंद हो रहे हैं आनंदित, ये भक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण को मार डालने के लिए वो लड़ रहा है। और यशोदा जी कृष्ण के प्रेम के लिए, ये बच्चा हमारे केवल दूध पर रक्षा नहीं हो सकती है, गैया का दूध से इसे मक्खन बनाऊंगी, तरह तरह की चीजें बनाऊंगी, और ये इसने मटकी को फोड़ दिया, बस कृष्ण को, कृष्ण से भी अभी कृष्ण की चीजें प्यारी है, ये भक्ति है। इसलिए अपने तन से मचन से भावना से जितनी भी चेष्टाएं हैं, वो किसके लिए हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो, अनुकूल रूप में हो, प्रतिकूल रूप में ना हो, यही उत्तम भक्ति है। इसको सोच करके देख सुन करके ऐसा ही गोपियों जैसी भक्ति संसार में ऐसा कोई नहीं है। इसलिए ऐसी भक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा दी है। अभिभक्ति का स्वरूप बतलाना था, अन्य अभिलाषिता का तात्पर्य तो मैं बतला नहीं सका, यदि संभव होगा तो दूसरे दिन जहाँ पर होगा या इनके घर पर या पास में मंदिर में, 3 दिन और है वहाँ और 2 दिन शायद सुबह में है, इन चीज़ों को बतलाने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि सहज से सहज रूप में लोग भक्ति का स्वरूप जान करके वैसे ही भक्ति को करने की चेष्टा करें। आज यही सब अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को 2-4 मिनट समय हो तो अंग्रेजी में, इन लोगों ने समझा नहीं, हमारे साथ में घूम रहे हैं और देशों में तो अंग्रेजी में बोलता हूँ तो ये लोग समझ जाते हैं, और मेरे लिए भी अधिक बोलना थोड़ा सा मना है, इसलिए यदि हो सके तो आप थोड़ा सा संक्षेप में अंग्रेजी में कुछ बतलाइए जिससे कि ये लोग भी समझ जाए। इसके बाद में आरती कीर्तन, और इसके बाद में कीर्तन होकर के समाप्त करें। थोड़ा सा बहाना और बनाओ, ठीक है, ठीक है, कीर्तन करो। तो वो हो गया, कल वाला बतलाया था, वो हो नहीं सकता, चलो कीर्तन करो। नमामि नंदनंदन, ये
नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि
नंदन। जय राधा माधव।